الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो आजकल इस वाली क्लास में, यानी जो रात को हमारी दीन एसेंशियल्स फॉर मेन प्रोग्राम के अंदर क्लास होती है पीर और मंगल और बुध को, तो उसमें हम हज़रत मुफ्ती मौलाना तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम की किताब उलूमुल कुरान में से पढ़ रही हैं। खुसूसन उसमें से तफसीरुल कुरान का मौजू जो है वो हमारे ज़ेरे मुतालिया है या ज़ेरे गुफ्तगु है। तो एक क्लास के गैप के साथ हम सिलसिले को फिर से चला रहे हैं कि तफसीर के मुआम के बारे में हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने जो लिखा वो ये कि यानी जो बाब दोम हम दरअसल पढ़ रहे हैं ना, इस किताब का बाब दोम सेकंड चैप्टर, तफसीर के नाकाबिल एतबार माखिर माखज़, बल्कि ठीक है, तफसीर के नाकाबिल एतबार माखज़ यानी अनरिलायबल सोर्सेज ऑफ तफसीर, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला हजरत ने इसराइली रिवायात का जिक्र किया था, जिसको हम मुख्तसरन मारुफ कुरान के मुकदमे के तहत बात कर चुके हैं इसराइली रिवायात के बारे में कि ये क्या होती हैं और इनके बारे में उम्मत के उलमाए कराम का क्या मौक़िफ रहा है। फिर हज़रत ने इसराइली रिवायात के जी ख़वातीन के ग्रुप्स में क्लास स्टार्ट होने वाला मैसेज भेजना है, उन्होंने याद दिलाया। तो नट जी भेज दिया, जज़ाकअल्लाह। तो इसराइली रवायात के बाद हज़रत ने सूफिया कराम की तफसीरें, तो उसमें फिर काफ़ी सारी तफसील है कि सूफिया कराम की सारी तफसीर जो है वो गलत नहीं है, लेकिन उनमें कुछ कुछ ख़ास बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे कि इसराइली रवायात में भी यही मामला था कि सारी इसराइली रवायात जो है वो गलत नहीं है, और उसके बारे में मौक़िफ़ है बाकायदा कि किसको कबूल किया जाएगा किसको नहीं कबूल किया जाएगा। उसी तरीके से सूफिया कराम की तफ़ासीर के बारे में भी वही स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। फिर उसके बाद तफसीर बिल राय का मौजू हज़रत ने रखा कि एक होता है तफसीर बिल रिवाया, ठीक है। तो बिल रिवाया जो है उसके बारे में तो कोई ऐसा इश्काल नहीं है, क्योंकि कुरान की कुरान से तफसीर, कुरान की हदीस से तफसीर, कुरान मजीद की जो है वो सहाबे कराम के अकवाल से तफसीर, इसी को तफसीर बिल राय कहा जाता है, ठीक है। तो उसके ऊपर तो उम्मत का इत्तेफाक है कि अगर ये कुरान के बारे में तो कोई शक व शुबा ही नहीं कि उसमें कोई ज़यीफ़ रिवायत है या कोई मौजू रिवायत है, कुरान मजीद में तो ऐसी कोई रिवायत ही नहीं है। हदीस मुबारक के बारे में है कि उसमें कुछ लोगों ने घड़ी हुई रिवायत जो है वो डाल दी है, तो ऐसी रिवायात को जो है वो तफसीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यही मामला सहाबा इकराम के अकवाल का भी है कि घड़े हुए अकवाल अगर सहाबा इकराम की तरफ मंसूब करके तफसीर उनसे करने की कोशिश की जाएगी तो उनको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो तफसीर बिल रिवाया थी, लेकिन फिर तफसीर बिल राय, ठीक है, अपनी राय से तफसीर करना, तो इसकी तफसीर जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि ये भी जो है ना वो स्टैंडर्ड्स के तहत जो है वो कबूल की जाएगी। अगर स्टैंडर्ड्स के खिलाफ होगी तो तफसीर बिल राय को मुस्तरद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हजरत ने तफसीर में गुमराही के असबाब ये टॉपिक शुरू किया कि किन वजूहात से तफसीर करने वाला शख्स जो है वो गुमराह हो जाता है या राह को गुम कर देता है। तो उसमें सबसे पहला था ना अहलियत, बगैर अहलियत के ही तफसीर करना शुरू कर दिया, उसके उस मैदान में जो है वो कदम रख दिया, अहलियत पैदा नहीं करी। भाई अहलियत पैदा कर लें तो आप कर सकते हैं, चाहे आप सिख की औलाद क्यों ना हो, मुसलमान की औलाद क्यों नहीं कर सकेगी तफसीर अगर उसके अंदर अहलियत पैदा हो गई यानी इल्म हासिल कर लिया, तो फिर मुसलमान की औलाद क्यों नहीं तफसीर कर सकती कुरान मजीद का, जबकि सिख की औलाद भी तफसीर कर सकती है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल, सिख का नाम क्यों लिया, क्योंकि दौर हाजिर के करीबी दौर के बहुत बड़े मुफसर कुरान जिनके ऊपर हर एक का इत्तेफाक है, वो कौन है, हजरत अल्लाह मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, वो कुछ भी उनके पास नहीं था जब वो दारुलूम देवबंद पढ़ने के लिए गए, हत्ता कि दूसरा जोड़ा पहनने के लिए भी नहीं था उनके पास। और उनकी जो है वो शादी के वाकये भी हम अपने मशायख से सुन चुके हैं कि शादी यानी अपनी बेटी से कर दी एक बड़े शेख साहब ने, इनके पास कुछ भी नहीं, पहनने के कपड़े भी नहीं थे, वो गीले हो गए थे, तो उन्होंने जो है ना वो सूखने के लिए टांग दिए थे और वही गीला कपड़ा पहन करके अपने निकाह के अंदर आ गए थे। ठीक है, तो अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सिख की औलाद थे, ठीक है, सिख खुद नहीं थे, वो तो कन्वर्ट हो गए थे, मुसलमान हो गए थे, सिख की औलाद थे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन पैदा कर लो, कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारा खानदान जो है वो कुरैश से होगा तब तफसीर कर सकते हो, तुम्हारा रंग जो है वो सुर्ख सफेद होगा तब तफसीर कर सकते हो, या तुम्हारे बाप दादा की जुबान अरबी थी तब तुम तफसीर कर सकते हो, नहीं, कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है। या तुम किसी सियासी तंजीम का, उलमाए कराम की सियासी तंजीम का हिस्सा होगे तब तुम तफसीर कर सकते हो, या तुमने जो है वो किसी बाकायदा इस्टैब्लिश किस्म के मदरसे से ग्रेजुएशन करी होगी तब तुम तफसीर कर सकते हो, नहीं, कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है दीन इस्लाम के अंदर। ठीक है, तो अहलियत चाहिए ना, अहलियत, तो अहलियत के क्राइटेरिया जो है वो सेटअप हुआ हुआ है, उस अहलियत के क्राइटेरिया के ऊपर आप पूरे आ जाएं, बस खत्म बात, इल्मी अहलियत चाहिए। ठीक है, बाकी फिर चंद गलत फहमियाँ हजरत ने फिर मौजू रखा, और उनमें से एक गलत फहमी कि उलमा और इजारादारी, यानी उलमा ने जो है ना वो अपनी मोनोपोली बनाई हुई है तफसीर के ऊपर। तो भाई आप क्या चाहते हैं, सीधा सा हमारा तो हम तो यानी स्ट्रीट लेवल के लोग हैं ना, ठीक है, तो हम तो बस सीधी सी बात करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप उलमा तफसीर नहीं करें तो क्या जुहला तफसीर करेंगे फिर, राइट? तो भाई आपको तफसीर करनी है, आप उलमा में शामिल हो जाएं, आप इल्म हासिल कर लें, अहलियत पैदा कर लें, ठीक है ना। लेकिन बस खामखा की जो होता है ना वो बस यानी कोई बात ऐसे करना कि सुनने वाला जो है ना जो पहले ही अनपढ़ है, जाहिल है, उसको वो बड़ी अहम लगनी शुरू हो जाए, हालांकि उसके अंदर कोई कोई अहमियत है ही नहीं, उसके अंदर उसकी कोई हैसियत ही नहीं उस वाले बात की, है सीधी सी बात है। इतनी तफसील तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिख दी है, लेकिन हम होता ना कि किसी बुढ़िया के पास गया ना कोई शख्स कि तो मुझे अल्लाह के वजूद के जो है ना वो दलाइल चाहिए, बुढ़िया ने कहा एक डंडा उठा के मारूंगी तो दफा हो जाए इधर से, मुझे अल्लाह ताला के वजूद के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें डंडा मारूंगी अगर तुम मुझसे इस तरह की बात करोगी। ठीक है, तो भाई इल्म वाले तो फिर इल्मी दलाइल में जाते हैं, उनके पास अहलियत भी है इल्मी दलाइल देने की, हम जैसे जवला के पास तो सीधी सी बात ही है, सीधी सी बात है कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जाहिल तफसीर करें, राइट? अगर उलमा इजारादारी करते हैं तो फिर क्या करें, जोहरा से तफसीर करना ही शुरू कर दें, ठीक है ना। तो बहरहाल हजरत ने जो जवाब दिया वो हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद उलमा और पापाइयत, यानी ये भी एक ऐसे ही बेबुनियाद किस्म का जो छोड़ते हैं खाली, है कि पापाइयत जिस तरह से ईसाइयत में थी तो मुसलमान मौलवियों ने जो है ना वो यहाँ पर भी ईसाई वाला निज़ाम जो है, ईसाइयों वाला निज़ाम जो है वो चला दिया है कि यहाँ पर भी पापाइयत का निज़ाम बना दिया है। भाई आपको अलिफ बे भी नहीं पता, हम जैसों का तो यही जवाब होगा ना कि आपको तो पापाइयत के अलिफ और बे का भी नहीं पता कि ये होती क्या चीज़ है, और आपने जो है ना बस इधर उधर से कुछ उड़ती हुई चीज़ें सुन ली या पढ़ ली, दो चार चीज़ें इधर उधर से, और आपने जो है वो एक और ऑब्जेक्शन टूस दिया कि इस्लाम में जो है वो पापाइयत का निज़ाम बन रहा है। ठीक है, पापाई द सेलर मैन, वो शायद आपने देख लिया होगा, तो वो पापाइयत वाला क्या नाम है उसका, पापाई द सेलर मैन, तो उधर से आपने पापाइयत का जुमला लेकर के आ गए, यानी बिल्कुल बेबुनियाद, कोई आगे पीछे का हमें पता नहीं होता और हम खामखा के इतराजात करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, उलमा और पापाइयत, ये भी एक गलत फहमी जिसका कि हजरत ने बड़ी तफसील के साथ जवाब दिया, हजरत का ये बहुत मेजर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है ईसाइयत का, तो हजरत ने उसके हिसाब से वो जवाब भी दिया। फिर उसके बाद हमने जो अगली गलत फहमी या अगले गुमराही का सबब जो है वो था कुरान करीम को अपने नजरियात के ताबे बनाना। ठीक है, ये भी हम पिछली क्लास में पढ़ के मुकम्मल कर चुके हैं, मुझे याद नहीं था तो गलती से जो है वो मैसेज के अंदर हमने ये लिख दिया कि हमने ये वाला मौजू पढ़ना है, हालांकि ये वाला मौजू हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो पढ़ना है वो है जमाने के अफकार से मरूबियत। जमाने के अफकार यानी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, करंट जमाना चल रहा है, उसमें जो ज्यादा वायरल हुए हुए हैं आजकल सोशल मीडिया के की लैंग्वेज चलती है ना, तो ज्यादा वायरल हुए हुए, ठीक है, जो अफकार है, जो सोचे हैं, तो उनसे आप मरऊब हुए हुए हैं, उनके रोब में आए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हजरत लिखते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं अब पेज नंबर 375 से 375 के तफसीर कुरान के सिलसिले में। तीसरी गुमराही ये है कि इंसान अपने वक्त के फलसफियाना और अकली नजरियात से जहनी तौर पर मरूब होकर कुरान की करीम की तरफ रुजू करे। ठीक है ना, यानी आप पहले से मरूब हुए हुए हैं, ठीक है, जिसको कि हम अंग्रेजी जुबान के अंदर क्या कहते हैं कि प्री मेडिटेटेड, आपके जहन में जो है ना वो पहले से मौजूद कुछ ख्यालात हैं, कुछ आपने तस्वुरात बनाए हुए हैं, ठीक है ना, उनसे आप मरूब हो चुके हैं किसी दूसरे नजरिए से, किसी दूसरे कल्चर से, किसी दूसरे निज़ाम से, और फिर आप कुरान मजीद की तरफ रुजू कर रहे हैं कि चलो जी इसको भी पढ़ लेता हूँ, मौलवी कहते हैं या अम्मा कहती थी, अब्बा कहते थे, नाना कहते थे, दादा कहते थे कि ये जो है वो अल्लाह की किताब है, अल्लाह जो है वो खालिक है, मालिक है, सुना है मैंने कि ऐसा है, तो चलो टाइम मिल गया है मुझे, जरा सा पास टाइम आ गया है मेरे पास, तो मैं इसको भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना, इतनी सारी किताबें पढ़ रहा हूँ, तो किताबें पढ़ना तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है, इस किताब को भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कुरान करीम की तरफ रुजू करे, सही है, टू चेक समथिंग आउट, अंग्रेजी में कहते हैं ना, टू लेट्स चेक चेक समथिंग आउट, इसको भी जरा ट्राई करके देखते हैं, तो ये तरीका होता है फिर कुरान मजीद की तरफ रुजू करें करने का। मरऊब हुई हालत में जब रुजू करते हैं ना, तब ये फिर बैक ऑफ द माइंड में ये ख्याल चल रहे होते हैं। और तफसीर कुरान के मामले में उन नजरियात को हक व बातिल का मेयार करार दे दे, ठीक है, जिनसे वो मरऊब हुआ हुआ है, उनको जो है वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया उनको बनाए, हक व बातिल का मेयार बनाए। ये गुमराही दरअसल दूसरी गुमराही के जेल में खुद ब खुद आ जाती है, यानी जो पिछली वाली गुमराही थी कि कुरान करीम को अपने नजरियात के ताबे बनाना, ठीक है, कि अपने नजरियात कहाँ से आए, माँ के पेट से तो नहीं अपने नजरियात आते हैं ना, ये तो अपने मुताले से आते हैं, जो नजरियात बनते हैं इंसान के जहन के अंदर, ये या तो इसने किताबें पढ़ी हुई होती हैं, उन किताबों को पढ़ पढ़ करके इसका जहन बन चुका होता है उन किताबों के नजरियात के मुताबिक, या इसने जो है वो ऐसे असातिज़ा के मातहत रह करके उलूम हासिल किए होते हैं जिनके नजरियात ऐसे थे, ठीक है ना, यानी एक तो आप खुद से किताबें पढ़ते हैं, एक होता है कि आप किसी उस्ताद के पास बैठ करके किताबें पढ़ते हैं, उस्ताद आपको किताब पढ़ाता है, ठीक है, तो उस्ताद के नजरियात जो होते हैं वो तालिबे इल्म के ऊपर, जाहिर वो उसका मकसद ही होता है कि मैं जिस चीज को जैसे सोचता हूँ अपने तालिबे इल्म के जहन में वही वाली बात डालूं, उस्ताद का मकसद यही होता है ना, मैं क्या कर रहा हूँ बैठ करके यहाँ पर, ये जो आप जो है वो
ये बोले कि
क्लास ले रहे हैं और ये फकीर जो है वो क्लास पढ़ा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बात समझी है अपने मशाइख से समझी, उलमाए कराम से समझी, किताबों से समझी, तो इन नजरियात को मैं आपके जहनों में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है ना, यानी मुझे छुपाने की क्या जरूरत है इस बात को, मुझे इसको जो है वो मैं क्यों दजल और फरेब का रास्ता अख्तियार करूँ, ठीक है ना, सीधी सी बात है, आप अगर ऐसा नहीं समझ रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसा ही है, ठीक है ना, ऐसे ही है, मैं आपको इसी नीयत से ये क्लास पढ़ा रहा हूं कि जो नजरियात मेरे जहन में सही सच हक हैं वो मैं आपको समझाऊं, और जिनको मैं बातिल समझता हूं वो मैं आपको समझाऊं कि ये बातिल है, ये मैं बैठ करके आपको न्यूटन के नजरियात तो नहीं समझा रहा हूं, या मैं बैठ करके आपको किसी दूसरे शख्स के नजरियात तो नहीं समझा रहा, मैं तो खाली वही समझा रहा हूं, मैं अपनी मिसाल रख करके आपको बात समझा रहा हूं, ठीक है ना, कि मैं तो आपको वही समझा रहा हूं ना जिसको मैंने सही समझा, मुफ्ती तकी उस्मानी की किताब क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुफ्ती तकी उस्मानी को मैंने सही समझा, राइट? उनके अखलाक से मुतासर हुआ, उनके उलूम से मुतासर हुआ, उनके जो है वो नस्बत से मुतासर हुआ, इस वजह से आपको मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब पढ़ा रहा हूँ। या आपको जो है वो पिछले दिनों मुफ्ती शफी उस्मानी साहब की किताब पढ़ा रहा था, क्यों पढ़ा रहा था? क्योंकि उनको सही समझा, उनको सही माना, उनको अच्छा माना, उनको फायदा मंद माना, इस वजह से मुफ्ती शफी की किताब पढ़ा रहा था। कभी आपको पीर जुल्फिकार अहमद की किताब पढ़ा रहे थे, मिसाली मर्द मिसाली औरत, राइट? और उसके अलावा और जो जो भी चीजें पढ़ाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? क्यों? क्योंकि पीर जुल्फिकार अहमद को सही समझ रहे थे, सही समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके अफकार को जो है फायदा मंद अफकार समझते हैं, इस वजह से उनकी किताब पढ़ा रहे हैं ना। तो जो स्कूल कॉलेज के अंदर जो आपको चीजें पढ़ा रहे होते हैं, वो उनको गलत समझ करके पढ़ा रहे होते हैं या सही समझ करके पढ़ा रहे होते हैं? वो उनके ऊपर यकीन रखते हैं ना, जब ही तो आप पढ़ा रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, राइट? यूनिवर्सिटी के अंदर पता नहीं हम क्या समझ रहे होते हैं, कि नहीं ऐसा नहीं है, वो गलत समझ करके पढ़ा रहे होते हैं, वो उन पे बिलीव ना करते हुए पढ़ा रहे होते हैं। हालांकि उनकी पूरी जिंदगी इस बात की दलील होती है कि वो उसके ऊपर बिलीव करते हैं, जिन किताबों को यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं, स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं, पूरी जिंदगी इस बात की दलील होती है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि नहीं वो तो अलग चीज है और ये तो अलग चीज है, और वो जो है ना कोई ताल्लुक ही नहीं है दोनों का आपस में, है? यानी यकीन, उस्ताद के यकीन का, उस्ताद के ईमान का किताब पढ़ाने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अजीब, ये तो किसका मसला है? ये किसका मसला है? ये हमारा मसला है ना। हम क्यों, हमारी अकल जो है वो इतनी खराब हो गई है कि हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि उस्ताद अपने नजरियात जो है वो तालिबे इल्म को ट्रांसफर कर रहा होता है, राइट? अपने नजरियात, जिन नजरियात को वो सही समझता है, वो वही अपने तालिबे इल्म को मुंतकिल कर रहा होता है अपने दर्स के अंदर, अपने लेक्चर के अंदर। लेकिन हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्यों, ये अजीब बात है, ठीक है? तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फिर क्या लिख रहे हैं कि हमारे जमाने में मगरबी अफकार से मरूबियत ने खास तौर से बड़ी कयामत ढाई है, इसलिए यहां इस गुमराही को मुस्तकिल तौर से जिक्र किया जा रहा है। यानी अलग से बाकायदा हेडिंग दे करके इस बात को हम अलग से जिक्र कर रहे हैं, मगरबी अफकार वाले मसले को, वरना दिस वॉज ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट वन, पिछले वाले टाइटल में कि कुरान करीम को अपने नजरियात के ताबे बनाना, उसमें ये कवर हो चुका था कि आपने पहले से कोई नजरियात जो है वो कहीं से हासिल किए हैं, अब जो है वो आप अपने आप को कुरान के ताबे बनाने की बजाय कुरान को नजरियात के ताबे बना रहे, जिसके आप जिससे आप मरूब हो, ठीक है? कुरान तो किताब हिदायत थी ना, और हिदायत का मतलब क्या होता है? एक शख्स गलत रास्ते पर अपने आप को समझ रहा है, अब वो किताब हिदायत से सही रास्ता सीखने के लिए आ रहा है, इस वजह से वो उस किताब को पढ़ रहा है ताकि मुझे सही रास्ता पता चले और फिर मैं उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करूंगा। जो शख्स पहले से ही अपने आप को हिदायत पे समझ रहा है, तो वो किताब हिदायत से क्या क्या हासिल कर रहा है, क्या हासिल कर रहा है वो किताब हिदायत से, राइट? वो तो अपने आप को हिदायत पे समझता है, ठीक है? यही बात जो है वो फिर मगरबी अफकार के ऊपर यही बात भी, यही बात अप्लाई हो रही होती है, ठीक है? किसी को कोई मतलब सवाल है, कोई इश्काल है, बात समझ में नहीं आ रही, दोबारा से समझाने की जरूरत है, तो बिला तकल्लुफ आप बता दीजिएगा। अच्छा, आगे लिखते हैं कि तारीख इस्लाम के हर दौर में ऐसे अफराद की एक जमात मौजूद रही है जो कुरान और सुन्नत के उलूम में पुख्तगी पैदा किए बगैर अपने जमाने के फलसफे की तरफ मुतवज्जो, ठीक है ना? यानी कुरान और सुन्नत के अंदर, कुरान और सुन्नत के जो उलूम थे उनमें पुख्तगी पैदा नहीं की उन्होंने, ठीक है? उसके बगैर ही उस जमाने का जो फलसफा, जो भी प्रिडोमिनेंट या मशहूर या वायरल फेमस फलसफा था, वो पढ़ना शुरू हो गए, ठीक है? और वो फलसफा उनके जहनों पर इस बुरी तरह मुसल्लत हो गया कि वो उसके बनाए हुए फिक्र और नजर के दायरों से बाहर निकलने की सलाहियत से ही महरूम हो गए, ठीक है? इसके बाद जब उन्होंने कुरान करीम की तरफ रुजू किया और उसकी बहुत सी बातें उन्हें अपने आइडियल फलसफे के खिलाफ महसूस हुई, तो उन्होंने उस फलसफे को झुठलाने की बजाय कुरान करीम में तहरीफ व तरमीम शुरू कर दी और उसके अल्फाज को खींच तान कर अपने फलसफियाना अफकार के मुताबिक बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, डज दिस रिंग अ बेल टू दोज ब्रदर्स हु आर रीडिंग और हु हैव रेड द रिसर्च पेपर? जो हजरात आप में से, या इवन खवातीन भी, ठीक है, जो अभी मकाला आपके साथ शेयर किया गया है, अब सबके साथ तो नहीं किया गया क्योंकि अभी दूसरे ग्रुप के ऊपर हमने भेजा नहीं था, भेजा नहीं है, भेजना है इंशाल्लाह इस क्लास के बाद, हमारा इरादा उधर भी भेजेंगे, दीन एसेंशियल्स फॉर मेन एंड वेमेन के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो दूसरा हमारा ग्रुप है जिसमें आप में से ज्यादातर लोग उस ग्रुप में उसमें हैं, ठीक है, तो अब ये आजिस तो जैसा पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, अगर भाई हम तो हमारे पास तो मुताले वगैरह का टाइम नहीं होता, या हम तौफीक नहीं होती है मुताले की, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब हम कमजोरों को तो फिर ऊपर से कोई मदद मिलती है तभी आगे एक कदम बढ़ाते हैं, वरना तो हम तो नहीं बढ़ा सकते। तो ये आजिस तो इसको बुरहान ही समझता है अलहमदुल्ला, क्योंकि हमने ये प्लान नहीं किया था। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो है ना, ये टॉपिक और वो मकाला एक साथ हमें मिले, एक साथ हम उसको पढ़ें, अल्लाह ताला ने हाफिज अहसान साहब के थ्रू जो है वो भिजवाया, भी पढ़ने की तौफीक भी, वरना तो इतना अरसे पहले आया हुआ था, हमने तो कई हफ्तों के बाद जा करके जो है ना वो मकाला पढ़ा, खुद भी पढ़ा, फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों के साथ भी उसको शेयर किया, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम डिस्कशन, एग्जैक्टली सेम डिस्कशन बिल्कुल कोइंसाइड हो रही है, ठीक है। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देते हैं कमजोरों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम तो हैं सबसे ज्यादा कमजोर, किसी मुकाबले नहीं। तो ये पूरी वही डिस्कशन है, ठीक है, कि अच्छा ये पुख्तगी का जो लफ्ज है इसका क्या मतलब है, इसको इसको पहले यानी डिसाइफर करना बड़ा जरूरी काम है। उलूम में पुख्तगी, वो ये कहना क्या चाह रहे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उलूम में पुख्तगी क्या मतलब होता है, उलूम में पुख्तगी का, या इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है उलूम में पुख्तगी का? सही मतलब क्या है इसका, उलूम में पुख्तगी, जो इल्म हासिल है उस पर यकीन रखना। जी माशाल्लाह, आपने तो किसी के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, सुभान अल्लाह। ठीक है, पहला ही जवाब जो है वो बिल्कुल सही आया अलहमदुलिल्लाह, दूसरा भी सही आया, ठीक है, कि उलूम में पुख्तगी का ये मतलब नहीं है जैसे कि बजाहिर लग रहा है कि आपने जो है वो किताबों के खजाने छाने हुए हैं, आपने जो है वो 10,000 किताबें पढ़ी हुई हैं, आपके जो है यानी आपने सारा वक्त आप मुताला करते रहते हैं, और आपने जो है वो यानी उलूम आलिया और उलूम आलिया और जो है वो फलसफा और जो है वो अरबी अदब और जो है वो यानी जमाने जाहिरिया की शायरी पढ़ी हुई है, और आपने जो है वो सारी तफसीरें पढ़ी हुई हैं, और आपने जो है वो सारी हदीस की किताबें उनमें से बहुत सारी आपने याद भी कर ली हैं। चले भाई, आपको तो उलूम में पुख्तगी नसीब हो गई है, अब जब उलूम में पुख्तगी नसीब हो गई है, अब जो है वो आप फलसफा पढ़ें, किसी दूसरे के तहजीब की किताबें पढ़ें, किसी दूसरे के जो है आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका, क्योंकि आपके उलूम में पुख्तगी आ गई हुई है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कसरत उलूम, हत्ता के इवन जो गहराई भी होती है ना वो भी यहां पे मुराद नहीं, बल्कि यहां पे मुराद पुख्तगी के लफ्ज से मुराद क्या है, यकीन, एतमाद, एतमाद और यकीन उन उलूम के ऊपर जो कि आपने पढ़े। आपके अंदर यकीन ही नहीं, एतमाद ही नहीं, आप डाउटफुल हैं, आप शक में हैं, आप शक में हैं उन उलूम के बारे में जो कि आपने दिन रात की मेहनत से हासिल किए हैं, आपके उन उलूम का आपको कोई फायदा नहीं। सर सैयद अहमद खान की जो आपने लिखा ना ऊपर, सर सैयद अहमद खान कोई जाहिल आदमी नहीं था, है ना, कोई जाहिल आदमी नहीं था, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत तफसीली उलूम उसने हासिल किए हुए थे। खानदान भी जो है, जिस इसी मकाले से ही हमें पता चला कि खानदान भी जो है वो बड़ा शरीफ था, यानी खानदान ही तो आप, वो बड़े उलूम इस तरह के लोग थे, कोई वो नहीं थे, पतंगबाज किस्म के लोग नहीं थे ये, लेकिन यकीन नहीं था उन्हें, ठीक है ना, किस चीज की बात हो रही है, वही के ऊपर यकीन नहीं था, कुरान और सुन्नत के ऊपर यकीन नहीं था कि दिस इज दी वे ऑफ सक्सेस एंड दैट्स इट, नो मैटर व्हाट वी आर आर ऑब्जर्विंग विद आर आईज। देखें एक और बड़ा मसला है कि ये बात याद रखें, ये मकाला पढ़ करके जो है ना, अब हमें बड़े हथियार मिल गए सर सैयद अहमद खान के खिलाफ, ठीक है ना, पहले इतने नहीं मिले हुए थे, अब और भी मिल गए, ठीक है ना, विच इज वेरी गुड, बट इन वन वे ओनली, एक एंगल से वो बात बड़ी अच्छी है। वो क्या क्या एंगल है कि हमें सर सैयद अहमद खान के खिलाफ बहुत सारा मवाद मिल गया है, एक जिहत से वो बात तो सही है, वो क्या जिहत है जिससे कि वो सही है, लेकिन दूसरी जिहत से ये बात गलत है कि सर सैयद को जो है ना वो अब हमने टारगेट प्रैक्टिस के लिए सामने रख करके सारे अपने गोले सारे अपने मिसाइल सर सैयद के ऊपर ही बरसाने शुरू कर देना, नहीं दिस इज नॉट राइट, बिल्कुल भी नहीं। सर सैयद जो है ना वो गोया का एक स्केप गोट मिल गया अब हमें, अब सारा इल्जाम सर सैयद के सर, सारी मुसीबत सर सैयद की मुसीबत, सर सैयद का सारा कसूर है, यानी हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, सारा गलत काम सर सैयद ने किया। दूसरी एक्सट्रीम पे थे हम पहले कि सर सैयद हमारे हीरो, सर सैयद से ज्यादा बढ़ करके जो है वो आजादी का हीरो कोई और नहीं, वो ये एक्सट्रीम थी, है ना, अपनी नस्लों को सर सैयद के कारनामे पढ़ा रहे हैं, सर सैयद को जो है वो सबसे बड़ा जो है वो रहनुमा और सबसे बड़ा जो है वो खैर ख्वाह और सबसे बड़ा जो है वो आजादी का चैंपियन, वो एक एक्सट्रीम थी। अब जो है ना वो सर सैयद के बारे में हमने कुछ पढ़ लिया, इधर उधर से दो चार पैराग्राफ्स पढ़ लिए, अब जो है वो सारे मिसाइल सर सैयद के ऊपर, यानी सारा मलबा जो है ना सर सैयद के सर, ये दूसरी एक्सट्रीम है। बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। भाई सर सैयद के बारे में जब ये सारी तफसील थी, मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे अकाबिर ने 1964 के अंदर ये चीजें लिख भी दी थी और किताबों के अंदर ये चीजें मौजूद भी थी, उलमा के भी फतवे मौजूद थे, तो आपने उनको इतना बड़ा लीडर कैसे बना दिया अपना? आपको इतनी अकल नहीं थी कि आप इस्लाम इस्लाम कुरान कुरान करते हैं, तो जो शख्स कुरान के अंदर ही तहरीफ कर रहा है आप उसको जो है वो रहनुमा और लीडर और पता नहीं क्या क्या और खैरफा बना करके कैसे चल रहे हैं आप, है ना, और अपने बच्चों तक को नहीं बताते, अपने पड़ोसियों तक को नहीं बताते, अपने घर के लोगों तक को नहीं बताते, है ना, ना आपने खुद पढ़ा ना किसी और को बताया, बस ऐसे ही, बस हाँ जी बस ठीक है चलता है चल रहा है कोई बात नहीं, सही है ना। तो अब वो एक्सट्रीम जो है वो अगर खत्म होती है तो दूसरी एक्सट्रीम क्या, भाई सर सैयद का क्या कसूर था, क्या कसूर था सर सैयद का जरा बताए ना, उस जमाने के हालात पता है क्या थे, वो भी हम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के मकाले से ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, मुफ्ती तकी उस्मानी की अल्फाज आपके सामने पढ़ के उस मकाले से सुनाते हैं, देखते हैं कि तजद्दुद की ये नई तहरीकें जिन हालात में पैदा हुई उनका तसव्वुर करने के लिए आपको आज से एक सदी पहले के माहौल का तसव्वुर करना होगा। हजरत है तो एक सदी पहले का है ना, हम आपसे कहते हैं आप 3 सदी पहले का माहौल तसव्वुर करें पहले, ठीक है ना, 3 सदी पहले का माहौल, सिर्फ एक सदी नहीं। ये वो वक्त है जब मुसलमान कौम सदियों तक दुनिया पर अपने जाहो जलाल की धाक बिठाने के बाद अपने जवाल की इंतहा को पहुंच चुकी थी, मुसलमान हुक्मरानों के नशे ऐश में बदमस्त होने के सबब उनकी सियासी अजमत के परचम एक एक करके सर नगूं हो रहे थे, बड़ी बड़ी सल्तनतें जिन पर मुसलमान सदियों से हुकूमत करते आए थे, 1300 साल यानी 13 सदियां मुसलमानों ने दुनिया के ऊपर हुकूमत करी है, रफ्ता रफ्ता उनके हाथों से छिन रही थी। दूसरी तरफ आवाम की तन आसानियों की वजह से, आवाम नॉट द लीडर्स, लीडर्स की तो तन आसानी, लीडर्स कितने होते हैं, मुट्ठी भर लीडर्स होते हैं, आवाम कितने होते हैं, करोड़ों में होते हैं, ठीक है ना, तो करोड़ों की तन आसानियां छुपा दो और सिर्फ जो है वो सारा मलबा जो है वही लीडर्स के ऊपर डालो जैसे आज हम करते हैं, ठीक है, तो क्या लिखते हैं कि दूसरी तरफ आवाम की तन आसानियों की वजह से यानी अय्याशियों की वजह से तहसील उलूम की वो तड़प फिना हो रही थी जिसने दुनिया को जीने और मरने के ढंग सिखाए थे, गर्ज जिस पहलू से देखिए, एक इन्हिताफ और जवाल था जो मुसलमानों पर मुसल्लत हो रहा था, एक पस्ती थी जिसमें वो गिरे चले जा रहे थे, और एक जबरदस्त थकन थी जिसने उनके अजा व जवारह, जहन व दिमाग और कल्ब व नजर शल कर दिए थे। ठीक है ना, ये अंग्रेज तो आए भी नहीं थे उस वक्त, अंग्रेज तो उस वक्त आए भी नहीं थे, ये किसने उनको ऐसा कर दिया था? अंग्रेज तो बाद में पिक्चर में आए हैं ना, जिस जमाने में मुसलमानों के ये आज़ा और जवारे शल हो रहे थे, ज़हनो दिमाग और ये सब, जो ये वो जमाना था। अभी हम एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे, आप में से हैं हामिद साहब, जिनको जानते हैं अपने सर, अक्सर वो बताने लगे कि जब हम हैदराबाद गए थे कुछ काम से ना, तो वहां पे हमने टूर लिया हैदराबाद का, चार मीनार वगैरह के इलाके का। तो टूर गाइड जो है वो हमें बता रहा था कि पूरा पता नहीं कितने मील का जो इलाका है चार मीनार का ना, वो सारी सिर्फ शादी ब्याह के जो कपड़े होते हैं और जो वहाँ के जेवर होते हैं, और यानी बड़ी जबरदस्त शादी ब्याह का, इतना जबरदस्त पता नहीं कितनी 100 दुकान दुकानें हैं वहाँ पर। ठीक है, फिर कहने लगा कि टूर गाइड ने हमें बताया कि जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद साहब थे ना, तो उनके जो है ना वो एक जोड़ा पता नहीं कितना महंगा होता था, एक जोड़ा जो कपड़ा वो पहनते थे, और वो दिन में दो जोड़े तब्दील करते थे, दो जोड़े दिन में तब्दील करते थे, और जिस जोड़े को एक दफा उन्होंने पहन लिया वो दोबारा नहीं, उनके बदन पे दोबारा नहीं आता था, और पता नहीं क्या क्या इस तरह से जो है ना वो उनके माल और दौलत के वाकयात उसने बताया इन लोगों को ना। और क्या, वो तो आप में से किसी ने मुझे बताया था, जो मैं कई दफा उनको भी बता चुका था और दूसरों को भी बता चुका हूँ, कि जो कोहिनूर हीरा बड़ा मशहूर है, मलका बर्तानिया के जो है ना, वो वहां पे उसके ताज में लगा हुआ है या वहां पे ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, कोहिनूर हीरा तो मशहूर हो गया है खाली, वरना वो सबसे अच्छा हीरा नहीं है, उसका साइज बड़ा है। हमारे इलियास भाई बताने लगे वो साइज का बड़ा है, इस वजह से उसको कोह कहते हैं, पहाड़। वरना निजाम ऑफ हैदराबाद के पास जो कीमती हीरे होते थे ना, कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती हीरा, उसको वो अपने डेस्क के ऊपर पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करते, पेपर वेट के तौर पर हीरे को, कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती हीरे। ब्रिटिश तो कोहिनूर लेकर के खुश हो रहे हैं, इनके पास तो उससे भी कीमती। और ये निजाम ऑफ हैदराबाद, फिर मैंने उनसे कहा कि निजाम ऑफ हैदराबाद के पास कितना बड़ा मुल्क था, इसी के ऊपर आप कयास कर लें, जो मुगल बादशाह होता होगा, जो मुगल सल्तनत जो थी, जो कि अफगानिस्तान से लेकर के जो है ना वो बांग्लादेश और नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, यानी सबसे बड़ी हुकूमत जो उनकी होती थी, उनके पास कितने, क्या माल दौलत उनके पास होता था। ठीक है, यानी आज हम यहाँ पे देखते हैं ना कि जी रोल्स रॉयस जो है वो इधर भी गुजर रही है, और बड़ी वाली रोल्स रॉयस इधर भी गुजर रही है, और पोर्श गुजर रही है, और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां गुजर रही हैं। मेरा तो ख्याल है कि इनके पास भी उसका अश्रय अशीर भी नहीं है जितना कि उनके पास होता था। यानी अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर, नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों के ऊपर ना, अपने हबीब का कलमा पढ़ने वालों के ऊपर, अल्लाह ताला ने जमीन के खजाने खोल दिए थे, उगल दिए थे, जमीन अपना यानी खुल चुकी थी, इतना माल इतनी दौलत। ठीक है, ये किसके पास थी, मुसलमानों के पास थी। ठीक है ना, ये जो आज बोलते हैं ना, ये वो भी हिंदू के बताने के ऊपर हमें ये बात पता चली है कि इंडिया का जो रेवेन्यू होता था वो पूरे दुनिया का जो है ना वो एक चौथाई रेवेन्यू होता, 25% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो किसके पास था, ये मुसलमानों के पास था। ठीक है, तो इस माल दौलत के हालत में कुरान की अनदेखी हुई जो हकीकतें उसने बताई, अल्लाह किसको किसको नजर आता है, अल्लाह ताला, जन्नत किसको नजर आती है, जहन्नुम किसको नजर आती है, राइट? जब आपको दुनिया के अंदर शैतान की बात आपने मानी, मशायख की बात आपने मानी नहीं, मशायख तो एक से एक थे उस जमाने के, लेकिन बात तो नहीं मानी किसी ने, तो शैतान की बात मान करके आपने कहा भाई जब दुनिया में इतनी अच्छी जन्नत मिल गई है दुनिया की, अब आप तस्वर करें ना, उसी दिन जो है वो हम उनके साथ बैठे हुए थे, तो हमने बच्चों को जो है वो ताजमहल का की तस्वीर दिखाई, ताजमहल आगरा में जो शहनशाह बादशाह ने अपनी बेगम साहिबा के लिए बनाया था, उसके सामने जो लोग खड़े हुए थे ना उस तस्वीर में, वो लग रहा था चूंटियां हैं,
और इतनी ऊंची, यानी फलक बोर्ड जिसको आज के दौर में स्काई स्क्रेपर कहा जाता है ना, उस किस्म की जो है वो इमारत है ताजमहल की। किसने बनाई थी? मुसलमानों ने बनाई, राइट। मार्बल का बना हुआ मास्टरपीस, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और उसके अंदर साइंटिफिक ऐसे वंडर्स भी हैं उसके अंदर। कैसा सिमेट्रिकल है, ऐसी रोशनी आती है, इधर से आती है उधर से निकलती है, पता नहीं क्या क्या कैसे बनाई थी ये क्रेन्स। हम अहराम मिस्र के बारे में हैरान होते हैं कि ये क्रेन्स नहीं थी, इन्होंने अहराम मिस्र कैसे बनाया? अहराम मिस्र की कोई हैसियत ही नहीं है ताजमहल के सामने। अहराम मिस्र तो फिरौन ने बनाया था, उसके पास भी क्रेन्स नहीं थी ना, जो है वो शहनशाह के पास क्रेन्स थी। उस जमाने में क्रेन्स ईजाद हो गई थी, राइट। लेकिन किसने बनाया? नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने वो ताजमहल बनाया, राइट। तो मुसलमानों के पास क्या कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या नहीं था, क्या चीज गंवा दी, क्या चीज जो है वो रुखसत कर दी, शैतान की बात मान के, रहमान की एजेंट्स की बात ना मान करके, यकीन, अल्लाह पर यकीन, आखरत पर यकीन, ठीक है। तो भाई जब अल्लाह और आखरत के ऊपर यकीन नहीं, तो फिर तो जब कोई परेशान होगा अपने कौम के हालात को देख करके, तो उसने तो वही करना है ना जो सर सैयद अहमद खान ने किया था, राइट। क्या करना था उसने फिर? यही काम तो करना था जो उसने किया। कम से कम उसने पतंगे तो नहीं उड़ाई ना, कम से कम उसने जो है वो बैठ करके बैतबाजी के मुकाबले तो नहीं किए ना सर सैयद अहमद खान ने, राइट। सर सैयद अहमद खान ने बैठ करके जो है वो पता नहीं क्या शराब और आम खा रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं और इस किस्म के ऊपर, राइट। उसने भाई उसके बारे में अच्छा गुमान रखते हुए, दिल का हाल ताला जानता है, ठीक है ना। तो उसने जो है वो भाई क्या क्या कमी थी उसके पास, क्या कमी थी? फिक्र की कमी नहीं थी, ठीक है ना। एक कुछ करना है, कुछ करना है, किस चीज की कमी थी उसके पास? वही के ऊपर यकीन की कमी थी ना उसके पास, कि भाई चाहे जैसे भी हालात हो, हमारे हम इतना बड़ी मुमलिकत हम गंवा चुके हैं, सब हमारे हाथ से निकल चुका है बिल्कुल। यानी आप तसव्वुर करें ना उस वक्त इंडिया का क्या हाल होगा, जैसे कि अभी आप जो है ना वो कराची के अंदर जो है वो किसी बहुत ही किस्म के जो है ना वो, यानी बिल्कुल अनपढ़ किस्म के एरिया में चले जाएं, या किसी पाकिस्तान के इस किस्म के जो सारे मुसलमान रहते हैं लेकिन बिल्कुल कोई यानी दीन से कोई वास्ता नहीं, ज्यादातर गरीब इलाके जो होते हैं वहां पे ऐसे ही नजर आते हैं, दीन से कोई वास्ता नजर नहीं आता, बिल्कुल जो है ना वो रातों को जो है वो डब्बू खेल रहे हैं, तो पान की बीड़ी जो है वो मुंह में भरी हुई है, और जो है वो लड़कियों को जो है वो सीटियां मार रहे हैं, तो ये कर रहे हैं वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है ना। आज तो फिर कुछ दीन नजर आ जाता है कुछ जगहों पर, उस जमाने में तो वो भी खत्म हो चुका था, वो भी खत्म हो चुका था, ठीक है ना। तो मुसलमान जो थे उस जमाने के, जो मुसलमान थे उनकी क्या हैसियत थी, उनको कौन कैसे अच्छा समझ सकता है? मौलवियों को वैसे ही लिफ्ट नहीं करानी थी, उनको तो वैसे ही जो है वो साइड पर रखा हुआ था, ठीक। जब उन्होंने बगावत भी शुरू करी तो किसी ने मदद नहीं करी उनकी, अवामुन्नास ने मदद करी, करोड़ों मुसलमान नहीं रहते थे इंडिया में उस वक्त, तो ये मौलवियों को पकड़ पकड़ के दरख्तों से कैसे लटका दिया गया? किन्होंने लटकाया है? किन्होंने लटकाया दरख्तों से पकड़ पकड़ के? अंग्रेज ने लटकाया। अंग्रेज तो जो है वो कितने हजार मील दूर से सफर करके, वो भी कश्ती के ऊपर सफर करके आता था, शिप्स के ऊपर सफर करके आता था ना अंग्रेज। किससे लटकवाता था? हिंदुस्तान के रहने वालों से लटकवाता था ना, इन मौलवियों को, उलमाए कराम को तोपों से बंधवा करके जो है वो जो, तो भाई उस जमाने में जो मुसलमानों का हाल था ना, आज हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि किस जमीन के दहाने आपके आपके सामने खुल चुके थे, कैसा माल और दौलत और आपके सामने खजाने जो है वो अल्लाह ताला ने उंडेल दिए थे, लेकिन आपने अल्लाह को भुला दिया, आपने कुरान को भुला दिया, आपने जो है वो यकीन को बिल्कुल अपनी जिंदगी से खत्म कर दिया, बस रिवायात, ये जुलूस निकाल रहे हैं, मातम कर रहे हैं, इधर जो है वो रबीउल अव्वल के प्रोग्राम मना रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, शेर व शायरी कर रहे हैं, ये सिर्फ रिवायात रह गई खाली, ठीक है। तो फिर क्या हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या लिखते हैं, कि दूसरी तरफ मगरबी कौमें जो अब तक गारों में पड़ी सो रही थी, ठीक है ना, गारों में पड़ी सो रही, यानी वो जो यूरोप का जो हाल था, जाहिल गढ़ गंवार बिल्कुल गलाजत में लिखे हुए डार्क एजेस जो थी यूरोप की, एकदम अंगड़ाई लेकर के उठी। एकदम कैसे उठी, वहां पे भी रिफॉर्म जो हम पहले भी अभी पढ़ चुके हैं, रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो आती रही वहां पर, तो वो अंगड़ाई लेकर के उठी। ये तो एक महावरत हजरत ने लिखा है ना, उन्होंने मैदान खाली पाया क्योंकि मुसलमान की मुसलमानियां तो खत्म हो चुकी थी, यकीन और ईमान तो खत्म हो चुका था मुसलमान का, तो अब इनके सामने मैदान खाली था। उनके दिल में तस्खीर आलम का एक जज्बा पैदा हुआ, किसने कैसे पैदा हुआ, अल्लाह ने डाला उनके दिल में, अल्लाह के डाले बगैर उनके दिल में तस्खीर आलम का जज्बा नहीं पैदा हो सकता था। अल्लाह ने ऐसे हालात बनाए सदा देने के लिए, पिटाई करवाने के लिए मुसलमानों की, जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया था, राइट। मुसलमानों के जवाल ने उसमें एक और गर्मी पैदा करी, वो पूरी ताजा दमी निशात जिंदगी और हरारत के साथ आगे बढ़ी और देखते ही देखते मैदान पर छा गई, क्योंकि मैदान खाली था, मैदान पर छा गई और यकायक दुनिया का नक्शा ही पलट गया। अब सियासत भी उन्हीं की थी, सनत और हुनर भी उन्हीं के पास था, तलवार पर भी उन्हीं का कब्जा था और कलम पर भी उन्हीं का कब्जा था, ठीक है ना, यानी फिजिकल माइट भी उन्हीं के पास थी, इंटेलेक्चुअल माइट भी उन्हीं के पास थी, क्योंकि मुसलमान खाली छोड़ चुके थे चीजों को। इस मरहले पे जबकि मुसलमान अपने जवाल के इंतहाई दौर से गुजर रहे थे, पस्ती के इंतहाई दौर से गुजर रहे थे, उन्हें बयक वक्त दो महाजन में चूर तलवार थी, जी सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया था। जी तो ये सुनिए, अगला जुमला जो है ना ये असल है। अगर मुसलमानों में कुरून ऊला का ईमान यकीन, क्योंकि कुरून ऊला सहाबा का नाम का जो वक्त था ना, उसमें भी मुसलमानों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से वास्ता पड़ा था, बेजेंटाइन एम्पायर, क्रिश्चियन ट्रेडिशन, ठीक है ना, उस वक्त भी मुसलमानों को वास्ता पड़ा था। तो अगर मुसलमानों में, यानी इस 13वीं सदी के मुसलमानों में या 17वीं सदी ईस्वी के मुसलमानों में कुरून ऊला का ईमान यकीन, हौसला, जुर्रत और गर्मी आमाल होती, तो इन दोनों महाजों पर मुकाबला कोई मुश्किल नहीं था, कोई मुश्किल नहीं था इनसे मुकाबला करना, मगर शौमिय आमाल यानी हमारे अपने आमाल की वजह से, जो हमने अल्लाह को भुलाया, आखरत को भुलाया, ईमान यकीन की मेहनत खत्म कर दी हमने, इसकी वजह से कौम का अक्सर हिस्सा असलाफ की इस मुकद्दस मीरास को ऐशो इशरत की भेंट चढ़ा चुका था, ऐशो इशरत की भेंट, यानी हुक्मरानों के पास तो क्या मालो दौलत थी, अवामुन नास के पास इतनी मालो दौलत थी। वही हमारे दोस्त बताने लगे कि हैदराबाद में जो टूर गाइड था उसने बताया कि हैदराबाद की अवाम ने तोहफा दिया निजामुल मुल्क निजाम साहब को, तो वो तोहफा जो था ना, पता नहीं कितने किलोग्राम सोने का तोहफा था, ये सिर्फ एक अवाम के ग्रुप ने उनको तोहफा दिया, इतने किलो सोना, अवाम के पास कितने पैसे थे, ठीक है। तो मुसलमानों ने एक काम बड़ा अच्छा किया था, ये इनकी तरह नहीं कि अवाम जो है वो बिल्कुल रुले हुए हैं और सिर्फ हुक्मरानों के पास पैसा है, अवाम के पास भी पैसा था, वो भी खुश थे, जब भी तो वो ऐश-ओ-इशरत में पड़े, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है कि कि पहले जो है सर सैयद को हीरो बना के रखा हुआ था, अब सर सैयद को जो है ना वो सारे इल्जाम सर सैयद के सर, ताकि अपने आप को कुछ गिल्टी फील ही ना करना पड़े, है ना, अपनी इसलाह की कोई फिक्र ही ना करना पड़े, सारा कसूर तो सर सैयद का था। वो भाई जो कसूर सर सैयद का था वही कसूर हमारा भी है, और वही कसूर जो है बाकी लोग हमारे बाप दादाओं का भी वही कसूर था जो सर सैयद का कसूर था। असल कसूर तो ये ईमान और यकीन का ना होना था ना, असल कसूर तो ये था। और सर सैयद ने जो है वो चूंकि उसके पास फिक्र थी या उसके पास इल्म था, उसको जो है मौका मिल गया, उसने जो है वो उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया, और बाकी जो है वो उन्होंने वो भी नहीं किया जो कि उसने किया। ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी बुराई से बच गए। ठीक है, तो ये है असल मसला, ईमान और यकीन का मसला है असल में। ठीक है, अब वो उसके लिए आप तबलीगी जमात की मेहनत में लगें या मशायख के साथ लगें, जैसे भी लगें जो भी करें, भाई ईमान और यकीन का मसला है। हमारे पास यकीन नहीं है, हमने जो है ना वो रिवायतें शुरू करी हुई हैं, बहुत दीनदार हो गए हैं हम, और बहुत हमने जो है ना वो दीनी आमाल भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन जैसे कि आज इस फकीर जो है ना वो कहता रहता है कि क्या करें उस दीन का जिस दीन में सब कुछ है सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं। अल्लाह तो है ना कोई साइड की बैठी हुई कोई चीज़ है जो कि कयामत में देखी जाएगी, उसके साथ अल्लाह इन्वॉल्व भी नहीं है किसी भी चीज़ में, अल्लाह इन्वॉल्व भी नहीं है हमारे, ना तो हमारे कलेक्टिव मसाइल के अंदर अल्लाह की कोई इन्वॉल्वमेंट है ना उसबिल्ला हमारे नज़दीक, ना जो है वो हमारे इनफरादी मसाइल के अंदर अल्लाह की कोई इन्वॉल्वमेंट है हमारे नज़दीक। ये तो बस सुनी सुनाई बातें, कही कही बातें, वो हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, दनादन करके पढ़ाते हैं, खूब करके पढ़ाते हैं, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन है इन्वॉल्वमेंट कोई थोड़ी है। हाँ, दूसरों को सिखाते रहेंगे अपने मामले में, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह अल्लाह क्या होता है भाई, अल्लाह ने कुछ इन्वॉल्व होकर के अल्लाह ने भी कोई मदद करनी है, अल्लाह ने भी कोई हालात चेंज करने हैं, मैं अल्लाह की तरफ जो है वो एक कदम जाऊंगा तो अल्लाह ने भी जो है वो मेरी तरफ आना है, नहीं। ये तो हजरत जी के बयान में बड़ा अच्छा बयान होता है जिसमें कि वो सर धुनने का जी चाहता है हमारा, है ना, हत्ता कि आंखें भी आंसू बहाना शुरू कर देती हैं, लेकिन जब आते हैं अपने घर तो हजरत जी गए साइड पे, हजरत जी का बयान भी गया साइड में। अब जो अपने असल जिंदगी में आ जाए, जिस जिंदगी के अंदर अल्लाह ने कुछ नहीं करना, जो करना है मैंने करना है या मेरे दुश्मन ने करना है, या मैंने करना है या मेरे दुश्मन ने करना है, अल्लाह ने कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, यही मसला मियाँ बीवी के मसले आ जाए वहां पर भी यही मसला, अल्लाह है ही नहीं कहीं बीच में, राइट। या सास बहू के मसले आ जाए बिल्कुल वही सूरत हाल, अल्लाह कहीं भी बीच में नहीं है, कि अल्लाह ने भी कुछ करना है, अल्लाह ने भी कोई मदद करनी है, मैंने अल्लाह की बताई हुए अहकामात पे अमल करने की कोशिश करनी है, मैंने अल्लाह से मांगना है, मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है, आगे से अल्लाह ने रेस्पॉन्स करना है, अल्लाह ने मेरे शौहर का दिल बदलना है, अल्लाह ने मेरी बीवी का दिल बदलना है, अल्लाह ने मेरी औलाद को जो है वो हिदायत देनी है, अल्लाह ने मेरी हिफाजत करनी है, अल्लाह ने मेरी औलाद की हिफाजत करनी है, नहीं, जो करना है मैंने करना है और मेरे दुश्मनों ने करना है जो कि मखलूक में से ही मौजूद है। दुश्मन किधर है? मखलूक, खालिक कहीं भी नहीं, किताबों 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 से ज्यादा खालिक की कोई हैसियत नहीं, किताबों से ज्यादा खालिक की जो है ना वो कोई जगह नहीं हमारे पास किताबों में रखने के अलावा। तो क्या करें यार ऐसी दीन का, और सारा कसूर सर सैयद का। अब पता चल गया सर सैयद के बारे में, तो चलो जी सर सैयद की जान को आ जाएंगे अब हम। ठीक है, ये मकसद नहीं था सर सैयद के बारे में चीजें बताने का, मकसद ये था कि आप जिस धोखे में अपने आप को मुबतला किए हुए हैं, अपनी नस्लों को मुबतला किए हुए, उस धोखे से तो निकले ना, जिसको आप अपना खैरख्वाह समझे तो वो तो खैरख्वाह नहीं था, आप क्यों उसको खैरख्वाह बन करके और बना करके पेश करे चले जा रहे हैं, इससे आप बाहर निकल आए। ठीक है, अल्लाह करे कि हमारे बात समझ में आ जाए। वा आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।